आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इसराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहीं भी दहशतगर्दी को हर तरफ अमन के लिए खतरा करार दिया। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी को इसराइली पार्लियामेंट के आला तरीन एजाज स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। भारतीय रेलवेज होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर 1244 खसूसी ट्रेनें चला रही है। ईरान और अमरीका आज जिनेवा में फिर से अपने न्यूक्लियाई मुजाकिरात शुरू करेंगे। और T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड से 61 रन की शिकस्त के बाद श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इसराइल के साथ मजबूती और पूरे अज़्म के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-आज़म ने इसराइली पार्लियामेंट नेसेट में पहली बार तकरीर की और एक ताकतवर पैगाम के जरिए इसराइल के साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी इलाके में दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। अपनी अहम तकरीर में जनाब मोदी ने पूरी क़ुव्वत के साथ दहशतगर्दी से निमटने के लिए भारत के मजबूत अज़्म का इजहार किया।
India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards.
जनाब मोदी ने कहा कि वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की नेकाइशात, दोस्ती, एहतराम और शराकतदारी का पैगाम साथ लाए हैं। वज़ीर-आज़म ने यह भी कहा कि यहूदी बिरादरियां भारत में किसी खौफ या इम्तियाज के बगैर पुरसुकून तरीके से जिंदगी गुजार रही हैं। जनाब मोदी ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जानिब से तौसीक किए गए गजा अमन पहल को खित्ते में देरपा अमन के लिए एक बेहतर रास्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल के तहत अपनी पूरी हिमायत का इजहार किया है। वज़ीर-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत बन रहा है। जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत में शुमार होगा।
India has been the fastest growing major economy in the world. Soon we will be among the top three economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development.
वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी को भारत और इसराइल के दरमियान कलीदी मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए उनके गैर मामूली खिदमात के सिले में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। ये तमगा हासिल करने वाले भारतीय वज़ीर-आज़म पहले लीडर हैं जो इसराइली पार्लियामेंट यानी नेसेट का आला तरीन एजाज है। नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने इसराइली पार्लियामेंट में वज़ीर-आज़म मोदी के खिताब के बाद उन्हें इस एजाज से सरफराज किया। इससे पहले कल वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेल अबीब में इसराइल के अपने हमनसब बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बिलमुशाफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत इसराइली बाहमी ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लिया और पानी के बंदोबस्त, ज़िरात, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। पेश है वज़ीर-आज़म के आज के प्रोग्राम के बारे में तेल अबीब में हमारे नामनिगार धीरज काकड़िया की एक खुसूसी रिपोर्ट।
आज वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। ये दिन याद वशम के दौरे के साथ शुरू होगा। याद वशम एक यादगार है जो नाजी के हमले में मारे गए 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की याद में तामीर किया गया है। इस यादगार पर नाजी के हमले में मारे गए 6 लाख से ज्यादा यहूदियों की फहरिस्त है। वज़ीर-आज़म यहाँ एक यादगार हॉल में मुख्तसर दुआइया मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद वज़ीर-आज़म इसराइल के सदर इसहाक हारगो से मिलने जाएंगे। इस दौरे के बाद दोनों वज़ीर-आज़म वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, ज़राअत, पानी के बंदोबस्त, दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमाएकारी के अलावा अवाम से अवाम के درمیان تعلقات پر بات چیت ہوگی. اسرائیل سے دھیرج کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
وزیراعظم نریندر مودی نے انسٹاگرام پر 10 کروڑ فالوورز کا تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے. اس طرح وہ انسٹاگرام پر یہ حصولیابی حاصل کرنے والے پہلے عالمی رہنما اور سیاستداں بن گئے ہیں. وزیراعظم مودی سال 2014 میں انسٹاگرام سے جڑے تھے. انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فالوورز سے دوگنی ہے. وہیں 5 بڑے عالمی رہنماؤں کے فالوورز کی مجموعی تعداد بھی وزیراعظم مودی کے فالوورز کی تعداد سے کم ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فہرست میں 4,30,20,000 فالوورز کے ساتھ دوسرے مقام پر ہیں. وزیراعظم مودی انسٹاگرام پر دوسرے بھارتی سیاست دانوں سے کہیں آگے ہیں. بھارت میں دوسرا مقام اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کا ہے, جن کے فالوورز کی تعداد تقریباً 1,60,10,000 ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر کل سری نگر پہنچے. سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. عہدہ سنبھالنے کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلی عمر عبداللہ, صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اٹو اور دیگر معزز شخصیات نے ہوائی اڈے پر نائب صدر کا خیر مقدم کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کی سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کی آمد کے بعد ان کا رسمی استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. انہوں نے کل شام سری نگر کے لوک بھون میں ایک ثقافتی پروگرام میں بھی شرکت کی. آج نائب صدر جمہوریہ کشمیر یونیورسٹی کے 21ویں کنووکیشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلی عمر عبداللہ اور دیگر معززین, ماہرین تعلیم, انتظامیہ, عدلیہ, پولیس کے عہدیداران کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس موقع پر موجود ہوں گے. دریں اثنا انتظامیہ نے سری نگر اور خطے کے دیگر مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں. طارق راتر, آکاشوانی نیوز, سری نگر.
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ٹکراؤ پر مذاکرات, تقسیم پر اتفاق رائے اور چھوٹے فائدوں پر, انسانوں پر مرکوز ترقی کو اہمیت دی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے انسانی حقوق کونسل کے 61ویں اجلاس کے اعلیٰ سطحی سیگمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بھارت تنازعات, تقسیم اور غیر یقینی صورتحال میں مبتلا دنیا میں مشترکہ بنیادوں کی تلاش کرنے اور انہیں وسعت دینے کا خواہش مند ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے واضح کیا کہ بھارت کے ویژن کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے کہ کسی خطے کی عدم سلامتی یا کسی گروپ کی حاشیہ برداری کا منفی اثر سبھی کی مجموعی بہتری اور حقوق پر پڑتا ہے. بھارتی ریلویز نے آنے والے ہولی کے تہوار کے دوران مسافروں کے آسان اور محفوظ سفر کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں. مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مد نظر ریلویز نے 18 مارچ تک مختلف ریلوے زون میں 1,244 ہولی اسپیشل ٹرینوں کا اعلان کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
ہولی اسپیشل ٹرین خدمات کل سے شروع ہو گئی ہیں جو 18 مارچ تک جاری رہیں گی. ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر یہ تعداد بڑھائی ہوئی جا سکتی ہے. یہ خصوصی خدمات ملک بھر کے بڑے شہروں, ریاستی راجدھانیوں اور اہم علاقائی مراکز کو ایک دوسرے سے جوڑیں گی اور عام ٹرینوں میں بھیڑ بھاڑ کو کم کریں گی. مشرقی وسطی ریلوے میں سب سے زیادہ 50 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 275 پھیرے لگائے جائیں گے, جبکہ شمالی ریلوے میں 48 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 204 پھیرے لگائے جائیں گے. وہیں وسطی ریلوے میں 20 ہولی اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے 129 پھیرے لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ وسطی ریلوے نے 32 خدمات کے ذریعے 120 پھیروں اور جنوب مشرقی ریلوے نے 28 خدمات کے ذریعے 107 پھیروں کی شروعات کی ہے. ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ یہ وسیع تر انتظامات اس سال ہولی کے دوران لاکھوں مسافروں کے آسان اور بلا رکاوٹ سفر کو ممکن بنانے اور روزمرہ کے مسافروں کی دشواریوں کو کم کرنے کے تئیں سرگرم منصوبہ بندی کی عکاسی کرتے ہیں. نئی دلی سے دل نشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
جنوب وسطی ریلوے ایس سی آر نے سکندرآباد کے ریل نیلائم میں اگلے سلسلے کے ریل پارسل ایپ کے لانچ کے ساتھ اہم ترین ڈیجیٹل سنگ میل عبور کیا ہے. اپنی طرز کے پہلے اس ڈیجیٹل ای مارکیٹ پلیس کا مقصد گھر سے ہی پک اپ اور ڈیلیوری کرتے ہوئے شروع سے آخر تک خدمات کی پیشکش کے ساتھ مال ڈھلائی کے لاجسٹک میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے. جنرل مینیجر سنجے کمار شریواستو نے ایپ کا افتتاح کرتے ہوئے لمبی قطاروں سے بچنے اور پارسل دفتر کو سیدھے صارفین تک پہنچانے میں اس کے رول پر روشنی ڈالی. ایران اور امریکہ کے سفارتکار آج جنیوا میں نیوکلیائی معاملے پر مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے میٹنگ کریں گے. حالانکہ واشنگٹن نے ایران کے تیل کی تجارت और हथियारों के नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उन्हें आइंदा होने वाली बातचीत से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ये बातचीत तवील अरसे से तातुल का शिकार थी, लेकिन उन्होंने आइंदा होने वाली बातचीत के सिलसिले में काफी उम्मीद का इजहार किया है और इसे एक नया मोड़ करार दिया है। एक अवामी जलसे में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात आयतुल्ला खमेनेई की रहनुमाई में जारी हैं, जिसका मकसद बकौलून के उस सूरत हाल से आगे बढ़ना है जिसे उन्होंने ना तो जंग और ना ही अमन करार दिया।
ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकसी ने कहा है कि वॉशिंगटन के साथ समझौता मुमकिन है। उन्होंने इस वक्त को समझौते के लिए तारीखी मौका करार दिया, तहम उन्होंने खबरदार किया कि पेशरफ्त उसी सूरत में हो सकती है जब सफारतकारी को तरजीह दी जाए। उनके इस बयान को सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई फौजी कार्रवाई की धमकी से मंसूब किया जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में मगरबी एशिया की जानिब अपना दूसरा जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज रवाना किया है और खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। तजियाकारों ने इंतबाह दिया है कि अगर जिनेवा मुजाकरात नाकाम होते हैं तो कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है, जिससे मगरबी एशिया में फौजी टकराव और ताजा अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
आलमी सतह पर तेल की कीमतें कल तकरीबन 7 माह की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गईं। इसकी वजह अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी है। हालांकि अमरीका में खाम तेल के बढ़ते हुए जखायर ने इजाफी सप्लाई के खदशात की निशानदेही की है। लंदन में ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $71 फी बैरल फरोख्त हो रहा है, जो दिन के दौरान तकरीबन 0.5% इजाफे के साथ जुलाई के आखिर के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह के करीब था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी तहकीकती एजेंसी ने दिल्ली के लाल किला इलाके में बम धमाके के पीछे साजिश में मुबैना तौर पर वाबस्ता होने के मामले में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में गिरफ्तार होने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। गिरफ्तार होने वाले अफराद की शनाख्त जमीर अहमद आहंगर के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के गांदरबल का रहने वाला है। इसके अलावा श्रीनगर के रहने वाले तुफैल अहमद भट्ट भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। NIA के मुताबिक दोनों इस साजिश में सरगर्म तौर पर मुलविस थे और उन्होंने धमाका केस में असल मुलजिम को हथियार फराहम किए थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 8वीं जमात की सोशल साइंस की निसाबी किताब में अदलिया में बदउनवानी के हवाले से सख्त नोटिस लेने के बाद तालीम से मुतालिक तहकीक व तरबियत की कौमी काउंसिल NCERT ने कहा है कि उसने किताब की तकसीम पर सख्ती से रोक लगा दी है। इस जमन में NCERT ने मौजरत की है और इसे एक गलती करार दिया है। मर्दों के ICC T20 क्रिकेट आलमी कप में सुपर 8 के ग्रुप 2 के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। ये मैच कल रात कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इसराइल में शानदार इस्तकबाल किए जाने और अपने हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी, आबी वसाइल और ज़राअत समेत कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना में कौमी सेहत मेला 2026 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुल्क की तामीर व तरक्की में सेहतमंद शहरियों का किरदार इंतहाई अहम है। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इसराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहीं भी दहशतगर्दी को हर तरफ अमन के लिए खतरा करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसराइली पार्लियामेंट के आला तरीन एजाज स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। भारतीय रेलवेज होली के त्यौहार के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनजर 1244 खसूसी ट्रेनें चला रही है। ईरान और अमरीका आज जेनेवा में फिर से अपने न्यूक्लियाई मुजाकिरात शुरू करेंगे। और T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 मैच में न्यूजीलैंड से 61 रन की शिकस्त के बाद श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।